नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं। देश में जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई जगह हल्की बारिश, दिन और रात का तापमान अब भी सामान्य से नीचे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान देते हुए इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
आज भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी एलपीजी की 60% आवश्यकता का आयात करता है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में अनिश्चितताओं के कारण सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस गंभीर स्थिति में देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
यहाँ भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है।
लोकसभा ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सहमति दे दी है। आज लोकसभा में विधेयक पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तृत विश्लेषण के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देशभर में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए पीएम ई बस सेवा पहल शुरू की गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत पिछले महीने 225 इलेक्ट्रिक बसों के पहले बैच की आपूर्ति की जा चुकी है।
इसकी पहली खेप 225 बसों की अभी पिछले महीने ही डिलीवर कर दी गई है और बहुत जल्दी आने वाले महीनों में 6,500 बसों के एग्रीमेंट भी स्टेट्स ने कर लिए हैं। तो जैसे जैसे एग्रीमेंट होते जाएंगे कंपनीज डिलीवर करती जाएंगी और इस 10,000 की जो पहली खेप है ये 2027 के अंत तक ये कम्प्लीट होगी। एक समयबद्ध तरीके से कैसे लोगों का समय बचे, कैसे पर्यावरण उसमें मजबूत हो, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड उन बसों में भी चलेगा।
इस योजना की कुल अनुमानित लागत करीब 58,000 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए का सहयोग दे रही है। संसद के दोनों सदनों ने आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन वीर सेनानियों ने छोटी उम्र में ही देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
हमारे इन महान शहीदों की वीरता की अमर गाथा हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा की स्रोत रही है। हम इन महान सपूतों की शहादत को नमन करते हैं। हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं।
इस अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माई भारत केंद्र द्वारा सवाई माधोपुर में शहीद कल्याण मल स्मारक से पदयात्रा निकाली गई और शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। वहीं पाली जिले के खिवाड़ा में देशभक्ति गीतों के साथ पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। करौली में भी पदयात्रा निकाली गई और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान युवाओं ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 16 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली में विश्व जल दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि यह सम्मेलन जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन पर सुझाव और विचारों को साझा करने के मंच के रूप में काम करेगा। श्री पाटिल ने देशवासियों से जल संरक्षण और भंडारण करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, जल जीवन मिशन हो, रिवर लिंकिंग हो, जल संचय जन भागीदारी की बात हो, ये सभी के ऊपर हमने उनके साथ डिटेल में चर्चा किया। मुझे विश्वास है कि जो लोग पहले से ही जल संचय के लिए काम कर रहे हैं, रीयूज के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करने में हमें भी आनंद आया और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो सफल करने में इनका सहयोग मिलेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में जनसुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को आम जन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ये फैसला सुनाया। कटारा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के आरोपी हैं। फरवरी में एक मामले में जमानत मिलने के बावजूद कटारा जेल से रिहा नहीं हो सके थे, क्योंकि उन पर उप निरीक्षक भर्ती 2021 और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले भी चल रहे हैं। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कटारा ने संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने आवास से पेपर लीक किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। बोर्ड के इतिहास में पहली बार 10वीं का परिणाम मार्च में और 12वीं कक्षा से पहले घोषित किया जा रहा है। साथ ही कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड परिणाम भी कल ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कल दोपहर बोर्ड कार्यालय से परिणाम जारी करेंगे। राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र शुरू करने के आदेश की अनुपालना में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने का निर्णय लिया है। अजमेर से हमारी संवाददाता ने बताया कि बोर्ड ने परिणाम ऑनलाइन जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कल 10वीं कक्षा का परिणाम ऑनलाइन जारी किया जाएगा। बोर्ड की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 12 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रदेश के 6,194 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। विद्यार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि अंकित कर देख सकते हैं। बोर्ड प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी निराधार बात पर ध्यान न देकर केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी भागों में आज भी हल्की बारिश हुई है, वहीं अन्य हिस्सों में मौसम साफ रहा। आज दौसा और भरतपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसके अलावा जयपुर, अलवर, टोंक और करौली सहित कुछ अन्य जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बरसात हुई। मौसम में आए बदलाव के कारण ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज अजमेर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा समेत कई अन्य जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस पूरे महीने एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से लू चलने की संभावना कम है।
राज्य में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई इलाकों में देखने को मिलेगा। 26-27 मार्च को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। इसके असर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 29 से 31 मार्च के दौरान एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ राज्य के अनेक भागों में सक्रिय होगा। इस दौरान कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, तेज आंधी और कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आगामी 5-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने और हीट वेव से राहत बने रहने की प्रबल संभावना है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शासन व्यवस्था में बदलाव लाने और निगरानी को मजबूत करने के लिए एक रियल टाइम आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म पारंपरिक मैनुअल निगरानी से हटकर एक रियल टाइम केंद्रीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव के लिए तैयार किया गया है, जिससे पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। देश में जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई जगह हल्की बारिश, दिन और रात का तापमान अब भी सामान्य से नीचे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।